15 नवंबर 2011 लेक्चर नंबर 1 5 समवाय ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतां नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहुं जं जस्य जं निदेशे जेन विहानेन जं निकालं मे नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा संतः सतं निदेशे तेन विहानेन तं निकालं मे कोसकदिवारेदुं हिन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदिदौ वाणि सौपर्याये सो सद्दिच्छि शुद्धो जो संकदिशो कुदिति। जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के अनुसार हम यहाँ वस्तु में जो कारण कार्य व्यवस्था है उसकी चर्चा करते हुए अपना 5 समवायों का यहाँ प्रकरण चल रहा है। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ कार्य होता है ना पर्याय होती है, तो हर द्रव्य में हर समय में अपनी अपनी पर्याय होती है, तो उस पर्याय संबंधी जो 5 कारणों के समूह है वो वहाँ स्वयं वहाँ उपस्थित रहते ही है। उसमें से हमने देखा था एक तो है स्वभाव, स्वभाव में वो सारे हम वो त्रिकाली उपादान भी लेना है क्षणिक भी लेना है वो सब वो स्वभाव में आ गए। उस समय अपने स्वभाव में ही ऐसी योग्यता है कि उस पर्याय रूप से परिणमित हो गए। दूसरा हम अभी निमित्त नाम का समवाय देखते थे, बहुत सारी हमने यहाँ चर्चा की है। अब हम आए हैं 111 यानी आपने 112 है शायद
112
काल लब्धि के ऊपर के 2 पड़ेगा। देखो यहाँ क्या शुरू से निमित्त प्रधान शैली में मैंने यहाँ निमित्त 110 में बापू जी को बताया
110 ऊपर चलना
हाँ। तो निमित्त प्रधान शैली में मैंने निमित्त बताने के लिए देशना रूप निमित्त को आत्मानुभूति रूप कार्य में अत्यंत महत्व का स्थान देकर क्या कहते हैं ये जो समय दर्शन होता है तो वो 5 लब्धि पूर्वक ही होता है। ये 5 लब्धि कौन सी है मालूम है?
क्षोभसम
लब्धि, क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, हाँ देखना लब्धि, प्राग्य लब्धि और करण लब्धि। तो उसमें तो अभी अपना ये लब्धि का प्रकरण नहीं है, परंतु ये जो देशना लब्धि कहा है तो देशना लब्धि किसको कहना भाई?
जो उसके समय दर्शन में कारणभूत होता है
हाँ।
और उसमें देश सतदेव सतगुरु और सतशास्त्र ही
निमित्त है, परंतु देशना यानी क्या है? तो देशना उपदेश को कहेंगे। कौन सा उपदेश? मोक्ष मार्ग संबंधी। और वो देने वाले कौन है? तो ज्ञानी है, या तो तीर्थंकर है, या सामान्य जो कोई उपदेश देने वाले केवली हो, या गंधर है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, 5वें चौथे अनुष्ठान वाले ज्ञानी की जो देशना उपदेश है मोक्ष मार्ग संबंधी उसको देशना कहते हैं। तो देशना लब्धि किसको कहना? हम कौन भाई वो कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की। बहुत अच्छा। लब्धि कब कहेंगे? जब हमको प्राप्ति हुई तब। वहाँ वो उपदेश दिए रहे पर हमने सुनी तो सुनी नहीं तो हमें कहाँ प्राप्ति हुई? तो प्राप्ति कब कहेंगे? जब हम उसको जानेंगे तब। तो देशना में तो पहले सुनने का मुख्यता है, श्रवण यानी सुनना, फिर दूसरा है ग्रहण यानी समझना, क्योंकि सुना परंतु समझा ही नहीं तो क्या फायदा, केवल बैठने से क्या होगा, वो शब्द इधर तक आए तो उससे कुछ कल्याण नहीं होने वाला है, उसका अर्थ समझेंगे तो ही कल्याण होगा। सुना और समझा ताबड़ तक भूल गए तो कुछ नहीं उसका फायदा। तो सुना है, समझा है, यानी श्रवण है, ग्रहण है, फिर उस पर धारण है। धारण यानी कुछ याद रखेंगे तो विचार करेंगे ना। बार बार विचार कब करेंगे, जैसे हमने आप वो अब अनुप्रेक्षा का क्या स्वरूप है समझा, अब वो अनुप्रेक्षा भाना है ना, बारम्बार उसका चिंतन कब होगा, तो वो क्या बताया है वो थोड़ा ख्याल में आया, या सामने पुस्तक लेके थोड़ा हम विचार करेंगे, फिर थोड़ा तो स्मरण में रखेंगे ना, तब तो उस पर विचार होगा। ये जो अभी हम सारे सिद्धांत सीख रहे हैं, निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता है, फिर वो षटकारक देखे, पांच समवाय देखे, तो ये हमारे नाम याद रखेंगे, उसका कुछ स्वरूप ख्याल में आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। तो श्रवण, ग्रहण, धारण यानी याद में रहना, फिर उस पर बारम्बार विचार चलेगा। तो उसको कहेंगे श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, यानी ये ऐसे ही है, अपने बुद्धि द्वारा उसका निर्णय तक पहुंचाना, यानी वो तत्व विचार, तत्व चिंतन उसमें आ जाता है। निर्धारण यानी ये ऐसे ही है, ऐसे अपने ज्ञान के द्वारा निर्णय करना, निर्धार करना। और लास्ट है परिणमन, यानी उस रूप परिणमन, यानी क्या, जब से हमने सुना है बहुत कि ये सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप है, ये कुदेव कुदेव आदि ऐसे होते हैं, तो हमने वो सुना है, फिर हमने समझा है, फिर हमने विचार किया कि हम तो ऐसा समझते थे, यहाँ तो ऐसा लिखा है, उसमें सत्य क्या हो सकता है, निर्णय तक पहुँचे कि यही सच्चा है बाकी खोटा है, फिर भी वो खोटे को ही मानते रहेंगे तो हमारा परिणमन नहीं होना है उस रूप, तो परिणमन भी उसमें आता है। इतना सब होगा तो हमें देशना लब्धि हुई ऐसा कहेंगे। अब उसके आगे फिर आगे अन्य भी प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि आदि, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो ये जो देशना लब्धि है, इसके बिना तो सम्यक तो होता ही नहीं। देशना या तो इस भव में मिली हुई या पूर्व तीन भव पहले तक की हो सकती है, प्रोवाइडेड वो संगी पंचेन यही रहा, नहीं समझे।
नहीं, लेकिन मुझे पूछना है कि अगर हमने अगले तीन भव में से जो देशना मिली तो उनको ज्ञाति स्मरण ज्ञान होना चाहिए।
ज्ञाति स्मरण नहीं, वो देशना वो ज्ञान में आ जाता है, श्रुति ज्ञान में भी आ जाता है। जाति स्मरण तो एक्चुअली वो एक एक वर्ड टू वर्ड उसको याद आना चाहिए ऐसा नहीं है, उसका भाव उसको पकड़ में आता है कि मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, ये राग भाव भिन्न है मेरे से, ऐसा जो कुछ उसने पहले समझा है उसका एहसास उसको होता है। ये तत्व का भाषण जिसको कहेंगे, तत्व वैसे क्योंकि अभी तीर्यंचो में तो क्या है, जैसे शब्द भाषा का ज्ञान नहीं है, तो तीर्यंचो ने भी पूर्व की देशना सुनी है और फिर वहाँ जिन्ह बिंब देखा या अन्य जो कुछ बात बनी उनके लिए भी, तो उन्होंने कैसा समझा कि अरे ये जानन जानन, ये जानने वाला तो मैं हूँ, उनके भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना, उसको अब वो शब्दों में नहीं प्रस्तुत कर सकते, परंतु वो जानते रहे ना कि मेरे में ये क्रोधमान माया लोग हो रहे हैं, तो ये मेरे से भिन्न तत्व है, शरीर से मैं जुदा हूँ, इसलिए वहाँ पर भी ऐसा चिंतन चलेगा उनको, तो हम कहेंगे ये देशना का कार्य हुआ। देशना मिली है, अभी इमीडिएट कारण क्या होगा, वहाँ बाह्य कोई भी निमित्त बन सकता है, हो सकता है एक्सपीरियंस को कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो मरण के सम्मुख हुआ है, तो ऐसे में वो विचार तो होता है ना, उसको संगी पंचेंद्रिय जीव विचार तो करते हैं, तो ऐसे भी काल में हो सकता है कि पूर्वी की देशना उसको यानी वो उस रूप से उसको फीलिंग हो जाता है, भाव भाषण होता है उसको कहेंगे। भाव भाषण समझ, जैसे कोई तीरियंच है, गाय है, उसको प्रेम ऐसा शब्द मालूम नहीं है, वात्सल्य ऐसा शब्द मालूम नहीं है, परंतु वात्सल्य जो फीलिंग है अपने बछड़े के प्रति वो उसको है कि नहीं है। हाँ, तो उसका अनुभव हो रहा है कि नहीं, उसको उसको बच्चे के प्रति जो प्यार है बछड़े के प्रति, उसका तो उसको अनुभव है, उसको वो शब्दों में हम कह सकते वो तो नहीं कह रहे, परंतु वो तो जान रही है कि नहीं, हमें बच्चे के प्रति प्यार है उसको जानने में आ रहा है, अपने को ज्ञान हो रहा है वो भी वो जान रहे हैं, तो गाय भैंस को भी समय दर्शन होगा कि नहीं होगा, क्यों संगी पंचेन ये है, क्योंकि तीर्यंश के पर्याय में हमने देखा ना, सिंह को हुआ था, पार्श्वनाथ भगवान को भी हुआ था, कौन से पर्याय में हुआ था, हाथी के पर्याय में हुआ था, तो ऐसे ऐसे होता है ना, पीरियंचो में असंख्यात सम्य दृष्टि जीव है। हाँ,
ये फिनिक्स में जो घमंड है ना, वो कहते हैं कि कोई भी एक समय में ये लोक में 1300 करोड़ सम्य दृष्टि होते हैं, ऐसे उन्होंने।
हाँ, वो तो शास्त्र में अधिक से अधिक संख्या आती है, वो मनुष्यों की अपेक्षा बताते हैं।
अच्छा,
नारकी असंख्यात समय दृष्टि है, देव असंख्यात समय दृष्टि है, एनी गिवन टाइम। सीरियंचो में भी असंख्यात समय दृष्टि होते हैं। अब मनुष्य है ही संख्यात, उनकी संघ प्रमाण, फिर भी मनुष्यों में समय दृष्टि कितने हैं? तो मुनियों की संख्या ही करोड़ों में है। पांचवे गुण स्थान वाले कितने, तीसरे चौथे कितने वाले, उसकी भी संख्या आती है। तो चौथे गुण स्थान वाले कितने हैं? 13 करोड़ जो बनाए, 13 करोड़। तो 13 करोड़ तो पंचम गुण स्थान वर्ती है, 52 करोड़ तो दूसरे गुण स्थान वाले होते हैं, 104 करोड़ तो तीसरे गुण स्थान वाले होते, और 700 करोड़ चौथे गुण स्थान वाले।
700 करोड़,
हाँ। परंतु ये के 2.5 द्वीप में सभी मिलकर ये संख्या है।
अच्छा।
और उसमें विदेह क्षेत्र भी है, ऐरावत भी है, पांचों वर्त पांचों ऐरावत है, और भोग भूमि वाले भी जो, ये सब मिलकर मैक्सिमम संख्या बताई जाती
है। मनुष्य की बताई,
मनुष्यों समय दृष्टियों की,
वो
असंख्यातों में होते हैं। ये काउंटेबल तो मनुष्यों की संख्या है,
ये सब का तो मोक्ष तो होने वाला है।
बिल्कुल होगा ही, क्योंकि देव में गए तो वहाँ तो असंख्यात वर्षों की आयु है ना, सागरों की है, और वो भी जो समय दृष्टि है वहाँ के, मनुष्यों में आएंगे तभी उनके मोक्ष होगा। और मनुष्यों की संख्या हमेशा लिमिटेड रहेगी,
संख्या
संख्यात होती है वो,
पर्याप्त मनुष्य
तो यहाँ आकर ही मोक्ष हो गए, यानी वो भी वो सहज निमित्त ऐसा ही नियम है। हाँ।
जो समय दर्शन नारकी में रहता उसका आधा परिवर्तन कल हो गया समय दर्शन ले,
कोई भी देखो ये नियम है, मान लेते यहाँ किसी को समय दर्शन हुआ और ये उसका इतना अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, तो इससे बाहर वो मोक्ष की पर्याय नहीं होगी, बस ये दिस इज द लास्ट लिमिट
मैक्सिमम।
अब कोई उसी भाव में मोक्ष जाएगा, कोई 4 भाव के बाद मोक्ष जाएगा, हो सकता है कोई फिर मिथ्या तो मिल गया है, कुछ काल जाके वहाँ मोक्ष हो गया उसको, नहीं लाखों करोड़ों वर्षों भी चले जाएंगे। जैसे महावीर का जीव था, महावीर का जीव पहले कभी समय दृष्टि हुआ था कि नहीं हुआ था?
हुआ
कभी,
नई साल के भाव में ऐसे ऐसे था,
मुनि था ना,
वहाँ मुनि था, परंतु वहाँ समय दर्शन था कि नहीं अपने को पता नहीं, परंतु वो नारायण तो हुए थे बीच में, श्रेयांशनाथ भगवान हुए 11वें तीर्थंकर, वहाँ वो त्रिपुष्ट नारायण हुए थे। नारायण का जीव तो समय दृष्टि को ही, वो फिर बाद में वो निदान बंद करते छूट जाता है समय, तो वो बात छोड़ो, परंतु उन्होंने समय को प्राप्त किया था तभी तो नारायण पदवी मिली उनको बाद में, यानी नारायण बनने के पूर्व भाव में वो ऐसा। हाँ, समय दृष्टि होते हैं, मुनि भी होते हैं शायद, और फिर ऐसा कुछ निदान बंद बांध लेते कि जो कुछ है उनके, जो कोई विशेष चीज चाहते है या किसी का बदला लेना चाहते है, ऐसा जो कुछ बातें बन जाती है, तो उससे का उसके फलस्वरूप नारायण पदवी मिलती है उनकी। परंतु नारायण होने के बाद तो नियम से नरक में जाते हैं, तो नरक में जाते हैं वो मिथ्या तुम्हें चले जाके नरक में चले जाते हैं, ख्याल में है ना बस। और फिर वो कालांतर में घूमे इतने बीच में, तो इतना काल उन्होंने तो एक इंद्रियादि पर्याय में बिताया, इतना लंबा काल। अभी हम वो मारीची को भी पहले समय दर्शन था ऐसा अगर मानेंगे, फिर भी वो तो छूट तो गए ना, उन्होंने इतने पाखंडी मत स्थापित किए,
1 करोड़।
हाँ, और उनके तो जमाने में जो आदिनाथ हुए थे उनके बाद तो वो देखा देखी कितने ही जीव मुनि होकर भटक रहे थे, मालूम नहीं था सच्चा मार्ग। जैसे आदिनाथ भगवान के जीव वो तीर्थंकर होने के बाद तो उपदेश मिला सबको, परंतु जब उन्होंने दीक्षा ली थी, तब दीक्षा लेने के बाद ये नियम होता है तीर्थंकर का जीव जब दीक्षा लेता है तो मौन धारण करता है, मुनि अवस्था में कोई उपदेश नहीं देते हैं। लोगों को यहाँ तक की बात मालूम नहीं थी कि मुनियों को आहार कैसे दिया जाता है, वो विधि पूर्वक आहार मिले तो ही लेते, नहीं तो अन्यथा ग्रहण नहीं करते, ऐसे किसी के दरवाजे में तो जाते नहीं आहार मांगने के लिए, उनके विशेष विधि पूर्वक वो निकलते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि किसी को फिर जाति स्मरण हुआ, फिर जाति स्मरण में जाना कि नौ भाव पहले हमने ऐसा आहार लिया था।
कोई हुआ था ना?
नहीं, पोते को नहीं हुआ था, श्रेयांश राजा को हुआ था।
उनके पहले भाई
श्रेयांश राजा।
लेकिन हमारे पुस्तक में था कि ये पोता ही है कि दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये भगवान का नाती है।
वो मारी थी था।
नहीं नहीं, ये जो श्रेयांश था जिसने वो केड़ी का रस पाया।
हाँ हाँ हाँ, श्रेयांश। नहीं नहीं, वो श्रेयांश जो राजा था और उसका जो कोई भाई, दोनों ने मिलकर उनको आहार दान दिया। और वो श्रेयांश राजा को पूर्व भोग का स्मरण आया। क्या आया? कि आदिनाथ और वो पति पत्नी, यानी वो उनकी पत्नी थी श्रीमती रानी, नौ भोग पूर्व पहले की, और उन दोनों ने मिलकर किसी मुनि को आहार दान दिया था। तो ये आहार दान की विधि उनके ज्ञान में आई, फिर उन्होंने इस भव में आहार दान दिया। ये किसकी बात है? विधि पूर्वक आहार देने की। यानी वो मुनियों ने तो कोई उपदेश दिया नहीं था आहार कैसे देना, तो देखा देखी उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तो अपने राजा ने ली, तो उनके पीछे पीछे बहुतों ने ले ली, उन्होंने भी वस्त्र त्याग कर दिया। पर मालूम नहीं था उनके तो वो तो आहार के लिए निकले ही नहीं थे, और बाकी तो भटक गए, समय दर्शन तो था नहीं, तो वन में कुछ जो मिले वो खाने लगे। यानी बहुत सारे शिथिलाचार हुआ था। जब तीर्थंकर का उपदेश मिला, फिर वाणी में जो कुछ आया, फिर वहाँ पर जो कुछ बातें बनी वो अलग बात है। यहाँ क्या बात अपनी चल रही है? कहाँ से वो निकली बात?
देशना।
तो देशना रूप तो निमित्त होता ही है, इसलिए सम्य दर्शन में देशना को बहुत महत्व का स्थान है। कि देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव गुरु शास्त्र की इतनी बारंबार महिमाएं उन्हीं का निमित्त क्यों बताते हैं? क्योंकि ये देशना बिना तो कार्य होगा ही नहीं, और सच्चा उपदेश हो तो ही उसको सत्य मार्ग मिलेगा। उपदेश में या इनके स्वरूप में कुछ खोट हो तो उसको मार्ग ही बंद हो जाएगा, इसलिए इनका बारम्बार इतना महत्व बताया जाता है। देखो अभी दूसरा पैराग्राफ। पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि उसकी काल लब्धि आई, हम ऐसा कथन सकते हैं कि उसने पुरुषार्थ से ये प्राप्त किया, पर जब पुरुषार्थ से कर रहा है तब उसकी काल लब्धि आई है कि नहीं आई है? तब उसके वो निमित्त कर्म में हो या बाह्य निमित्त, हम देखेंगे बहिरंग निमित्त देशना वाला, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, उसने बहुत पुरुषार्थ किया, उसकी काल लब्धि तो आई थी, परंतु उसको निमित्त ही नहीं मिला। क्या ऐसा होता है? जिसकी काल लब्धि, जिसकी होनहार है और उसको वो उचित निमित्त न मिले, ये तीन काल में नहीं हो सकता। सिंह की पर्याय में उस जीव को समय दर्शन होने का काल अभी उसका नजदीक आया है, तो सामने चारण विद्धिधारी सहज वो अपने लिए गमन कर रहे थे उस मार्ग में, तो उसको सिंह को देख कर ख्याल आया अवधि ज्ञान से जाना कि ये तो अरे भविष्य का तीर्थन करे, तो कैसे उन्होंने उपदेश दिया होगा, कैसे उनके परिणाम होंगे? तो निमित्त हमेशा वो सहज हाजिर होता ही है। यानी हमें तो आकुलता निमित्तों की होती नहीं, ये नहीं मिला तो, ये नहीं मिला तो, लोग ऐसा भी कहते आज से कितने हम 50-60 साल हमारे बीत गए, ये मार्ग हमने पहले नहीं सुना, किसी ने हमको क्यों नहीं सुनाया, उनको गुस्सा भी आता है क्योंकि ये तो ऐसा अलौकिक मार्ग है और हमारे इतने दिन बीत गए और हमने धर्म प्राप्ति के लिए कहाँ क्या क्या नहीं किया, उपवास आदि किए, तीर्थ क्षेत्रों की वर्णना की, कभी कभी मुनियों के पास जाके रहे, परंतु हमें आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया, गुस्सा करके पूछते हैं। तो इसका सीधा सरल है कि उसकी योग्यता नहीं थी उसको जानने की, जब योग्यता हुई तो सहज रूप से उपदेश मिल गया। ये प्रसंगवश भी उपदेश कितने लोगों को मिलता है, कोई सहज रूप से आता है किसी अन्य कारण के लिए और फिर उसको सहज रूप से उपदेश मिलता है। हमारे यहाँ एक बहन बहुत दूर से, वो कांजुर मार्ग रहती है और बीच में बहुत बीमार थी, अब उसको ऐसी बुद्धि हुई कि यहाँ आए, तो उसकी लड़की सायन में रहती है, तो वो लड़की उसको छोड़ने के लिए हमारे यहाँ आ गई कि मम्मी को जाके छोड़े फिर मैं लेने को आऊंगी। तो आ रही है और अभी भी नया हमारा वो भाव दीपिका ग्रंथ शुरू हुआ है, तो आती है तो बैठ, आज पहला ही लेक्चर है तो बैठ गई, तो वो बोली मुझे समझ में आता है। मैं क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल, क्योंकि अभी तो बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं सारा। आना तो रोज, तो हफ्ते भर से आने लगी। हम आने के पहले की बात है, एक हफ्ते की। तो उसने तो सोचा नहीं था कि मैं सुनूं, अन्य किसी कारणवश आ गई और उसको सुनने को मिला। यानी जिसकी योग्यता होती है उसको अंदर से मालूम भी नहीं था कि मुझे इस बात में कुछ रुचि हो सकती है या मैं इसमें समझ सकती हूँ। ये सहज रूप से ऐसे कितने लोगों के साथ होता है। कभी कभी हम ट्रेन में जाते हैं, कोई बाजू वाले ऐसे कोई चर्चा छिड़ती है सहज रूप से बिना सोचे, तो फिर ऐसे वो तत्वों की गहन चर्चा भी होती रहती है। अन्यमति होते हुए भी उसको इतना रस लगता है, पुस्तकें मंगाता है या क्या क्या करता है, तो सहज रूप से मिला ना उसको। हमारे सोचा नहीं था कि हम बिल्कुल अनजान लोग एक साथ बैठे हैं और कोई ऐसी चर्चा निकली। तो जिसकी योग्यता है उसको सहज रूप से मार्ग मिलता ही है। यहाँ क्या कहते कि पांचों ही कारण है, अकेले निमित्त से नहीं मिला है, उसकी काल लब्धि आई है, उसका पुरुषार्थ है, वो सुनने का कहो या समझने का है, निर्णय करने का है, जो योग पर्याय है उसकी, उसका पुरुषार्थ वहाँ चलेगा। जैसे हम वो सुनने का पुरुषार्थ है, सुनकर समझने का पुरुषार्थ है, फिर उसको परिणमने का पुरुषार्थ है। जो पर्याय हो रही है वो अपने पुरुषार्थ से ही होती है। और हम पुरुषार्थ किसको मानते हैं?
कुछ करे, कार्य।
हाँ, कुछ करे, किसका? अपना नेपर का। और वो भी इच्छा हुई वैसा करे। इच्छा इटसेल्फ चारित्र गुण का विभाव है। हमें इच्छा हो रही है और हमने वो यहाँ इसे चीज उठाकर यहाँ रखी, तो हम देखो हमने पुरुषार्थ किया, इसको मानते पुरुषार्थ। देखो हमने सोचा कि हम बहुत गरीब है और अभी पैसा कमाना है, और हमने इतने साल मेहनत करके पैसा कमाया, घर बांधा, ये कर सब, देखो हमने पुरुषार्थ किया कि नहीं पुरुषार्थ किया। देखो कोई महिला थी बेचारी, वो तो विधवा हुई थी और शरीर बच्चे थे, उसने उनको बड़ा किया, देखो पुरुषार्थी है कि नहीं वो महिला। तो हम पुरुषार्थ किसको मानते हैं? अरे अपनी पर्याय उस समय, जो समय जो पर्याय होती है, वो समय वो पर्याय अपने द्रव्य में ही अपने पुरुषार्थ से अपने बल से होती है। उसमें वो द्रव्य का बल लगा है, द्रव्य का अपना कुछ प्रयत्न लगा है, ये इच्छा नहीं। पुरुषार्थ अलग बात है, इच्छा अलग बात है। तो हम तो इच्छा चाहे जैसा कार्य करे तो हम पुरुषार्थ मानते हैं। ये हमारी पुरुषार्थ संबंधी मिथ्या मान्यता है भाई। मिथ्या तो की पर्याय हो रही है, वो किसके पुरुषार्थ से हो रही है? वो जीव के अपने। कैसा पुरुषार्थ हो रहा है? खोटा। मिथ्यात्व के जैसा, मिथ्यात्व के योग्य पुरुषार्थ हो रहा है। रोग क्रोधमान माया लोभ करता है तो वैसा उसका पुरुषार्थ चल रहा है, उसको हम उल्टा कहेंगे। अब यह समय दर्शन हुआ, मुनि दशा हुई, अंतरंग में वो तो अरियन दशा हुई, सिद्ध हुआ, तो हम क्या कहेंगे? उस पर्याय जैसा पुरुषार्थ हुआ। यानी प्रत्येक पर्याय द्रव्य के अपने पुरुषार्थ से होती है। यानी पुरुषार्थ कौन से गुण की पर्याय है? वीर्य गुण की। तो अभी ये चीज यहाँ से यहाँ आ गई, हमने लाया तो आई ना, उसकी अपनी उपादान योग्यता से आई, क्रिया होती शक्ति उसका उपादान है। तो इसमें इसका पुरुषार्थ लगा कि मेरा लगा?
उनका
उसमें भी है पुरुषार्थ। ऐसा देखेंगे तो छह द्रव्य में अपना अपना पुरुषार्थ चल रहा है। हम तो शुरू प्राथमिक अवस्था में वीर्य गुण जीव का विशेष गुण कहते हैं, क्योंकि हमें अपनी विशेष चर्चा करनी है ना। परंतु प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं कर रहा है, उसमें उसका अपना पुरुषार्थ लग रहा है। तो पुद्गल में भी अपना पुरुषार्थ है वो,
इसलिए द्रव्य में वीर्य गुण है।
बहुत अच्छा, छह द्रव्य में वीर्य गुण है, वो सामान्य गुण कहलाएगा। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है ना, हम पहले ही स्टैंडर्ड वाले को ये नहीं बताएंगे। इनकी भाषा में दो महीने का बच्चा है तो उसको पूरण बोली नहीं खिलाएंगे। आपने सुना होगा उनकी कैसे थे। हाँ, वो तो पूरण पूरी खाएगा अच्छे से। तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये जो हमने पांच अलग अलग कारण देखे, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, क्या वो भी देखेंगे? होनहार है वो, मान इस समय पर विशिष्ट कार्य होना है, तो विशिष्ट कार्य होने का स्वभाव यहाँ पड़ा है। ये समय निश्चित है, वो काल लब्धि है, वो द्रव्य अपने स्वयं के बल से वो कार्य कर रहे हैं, उसका पुरुषार्थ लग रहा है, वही पर्याय होने योग्य है, वो उसका भवितव्य है और उस समय का निमित्त भी निश्चित है, वो वहाँ हाजिर ही है अपने स्वयं के कारण। तो ये सभी पांचों ही होते ही है। कथन करते समय हम कह सकते हैं उसका काल आया था इसलिए कार्य हुआ, उसने पुरुषार्थ किया इसलिए कार्य। कभी कभी शास्त्र में आता है काल लब्धि आने पर उस पुरुषार्थ से जीव समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, या ऐसा भी कहेंगे काल लब्धि आने पर कर्म का उपशम हुआ इसलिए जीव ने समय को प्राप्त किया। कहाँ का कथन किया? निमित्त का। एक को मुख्य किया, जहाँ एक को मुख्य करके कथन है वहाँ अन्य चार कारणों का स्वीकार है। परंतु ऐसा कोई मिथ्या भ्रम वाले होते हैं सर्वथा उसी से कार्य होता है मानते हैं, ये क्या है उनकी भ्रमणा है। जैसे नियति ऐसे डेस्टिनी, डेस्टिनी बस उसके लिए अन्य कुछ नहीं कारण, डेस्टिनी को सर्व कंट्रोलर मानते हैं, तो वो क्या हुआ? नियतिवाद, नियति से सब कुछ होता है। वाद यानी वो एकांतवाद है, एकांत है ना, सभी कारणों से कार्य हुआ मानना ये अनेकांत है। जब एक की मुख्यता से कथन कर सकते हैं हम, परंतु वहाँ अन्य चारों का स्वीकार है। परंतु जहाँ अन्य कारणों का स्वीकार नहीं है, सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है मानता है, तो वो हो गया एकांतवाद। वाद यानी कथन, एकांत का कथन हो गया, मिथ्या एकांत हुआ उसको। एकांत यानी एक ही धर्म, ये पांच है उसमें से एक को ही सर्वथा स्वीकार किया, अन्य चार को माना ही नहीं, वो क्या हुआ? एकांतवाद। यहाँ अपने बात हुई थी गत साल, वो एकांत मिथ्यात्व वगैरह की चर्चा की थी अपने यहाँ पर। तो देखो पांच कारणों अर्थात पांच समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, तब अन्य चार कारणों का भी गौण रूप से स्वीकार रहता ही है। परंतु इसे न मानकर सर्वथा, सर्वथा शब्द डाला ना, सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है मानना मिथ्या एकांत है, इसे एकांतवाद कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी अलग अलग मान्यता है, कोई मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं। ये लौकिक में तो ऐसे ना, निमित्त से ही कार्य होता है मानने वाले है सब, क्योंकि उपादान शक्ति कुछ होती है इस चीज का ही आता पता नहीं है, और निमित्त न मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते हैं। अन्य कई लोग यानी अन्य कोई मिथ्या दृष्टि, नियति यानी दैव पर सारा हवाला देकर एकांत नियतिवाद का पोषण करते हैं, बस जैसे रचने रचने ऐसा ही कहते फिरेंगे। तो उसमें वो उसकी स्वभाव की योग्यता से वो पर्याय हो रही है ऐसा नहीं मानेंगे, उसका वैसा ही पुरुषार्थ चल रहा है, वही काल लब्धि है, इसको किसी को नहीं मानेंगे, मात्र डेस्टिनी कहेंगे। ध्यान में आई ना बन, ये डेस्टिनी यानी नियति नहीं है वो बात नहीं है, परंतु सर्वथा उससे होता है मानना ये मिथ्या तो है। हाँ बोलो, नियति ने अभी यहाँ पर हम कहेंगे भवितव्य होनहार।
ये पुस्तक में सारी लिखी
किसमें?
नियति के पहले पेज,
पहले पेज में नियति को काल लब्धि कहा। नहीं वो तो नियति यानी वो तो भवितव्य कहना चाहिए, नियति यानी विशिष्ट समय में क्या होता है, इस अर्थ में उसको वहाँ लिया है। हाँ इसको काल लब्धि को भी नियति कहते हैं हम, कहते तो उसका काल आ गया, उसकी नियति अभी हो गई डेस्टिनी। यहाँ पर भी काल लब्धि में भी नियति को ही लिया है। देखो आगे हम पढ़ेंगे काल लब्धि को। प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे काल लब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं। हाँ नियति भी आ गई इसमें। उपादान की चर्चा में हमने क्षणिक उपादान कारण को कार्य का नियामक कारण अर्थात कार्य कब होगा इसका नियामक कारण कहा है। हमने देखा था क्षणिक उपादान की चर्चा की थी हमने, अनंत पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय और इस पर्याय की उत्पत्ति, उसी समय क्या है उस पर्याय होने की योग्यता उस द्रव्य में ही पड़ी है, तो द्रव्य अपनी योग्यता से ही उस पर्याय रूप से परिणमित होता है। ये जो जिस समय ये बात होने वाली है वो काल यानी कोई काल यानी वो समय नहीं लेना इसमें। द्रव्य जिस समय जो पर्याय रूप परिणाम यानी द्रव्य का परिणमन ही उसका काल है। क्या कहा? द्रव्य में अपना अपना काल है कहते हैं जब हम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो काल किसको कहना? तो हम कहेंगे द्रव्य अनादि से अनंत काल तक है। तो अनादि से अनंत काल तक है तो किस रूप में विद्यमान है? तो अलग 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 पर्याय रूप से विद्यमान है। तो द्रव्य का काल या इसका काल आया ऐसा कहेंगे, उसका अर्थ क्या है? द्रव्य की जो प्रत्येक समय में जो परिणाम है, अभी इसमें इतने मिलीमीटर के लिखे लाइन्स बताई, तो ये विशिष्ट इधर समय में हमें उसको ऐसा नहीं कहते 8 बजकर 5 मिनट ऐसा कहेंगे तो यहाँ का समय अलग है, आपके अमेरिका में 3-4 अलग अलग समय है, इंडिया का समय अलग होगा हर एक नेशन में। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि तारीख और उसका टाइम बता के वो नहीं चलेगा समय, परंतु अभी वर्तमान का जो समय है तो सबके लिए वर्तमान का समय है ना, ख्याल है ना? हम कह सकते कि ये हमारे अवसर पीने का ये काल है, परंतु वो भरत क्षेत्र की अपेक्षा कहेंगे। परंतु अभी सभी अनादि से अनंत काल तक ये सबका वर्तमान तो ये है ना अभी का, भले हमारे यहाँ अभी 8:30 बजे है, इंडिया में 6 बजे है ना, परंतु अभी सबका वर्तमान का समय है ना, आप उसको कुछ भी कहो, पर सबका वर्तमान का एक वर्तमान समय है और सबका अपना अपना परिणाम इस समय हो रहा है। तो इस समय जो कार्य होगा उसकी ये काल लब्धि कहेंगे, ये उस द्रव्य का काल कहने में आएगा। द्रव्य का अपना काल यानी क्या? उस समय का जो परिणमन है उसको हम द्रव्य का काल कहेंगे। देखो आगे सोचेंगे इसको, और प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है, तो एक समय में एक पर्याय होती है तो प्रत्येक द्रव्य में कुल पर्याय कितनी होगी? अब बताएंगे, द्रव्य में एक समय में एक पर्याय लेंगे हम, ये द्रव्य कहाँ कब से? अनादि से अनंत काल तक। तो अनादि से अनंत काल में प्रत्येक समय समय में एक एक एक, एक पर्याय है, अनंत कितनी अनंत होगी?
जितना जीव अनंत है उसकी पर्याय होगी।
हाँ बराबर है, हमको काल में बताना है ना कितने समय हो गए
अनंत काल।
देखो जितने काल के समय, तीन काल के समय,
तीन काल के समय
हम कैसा वो अनंतों को गिना था ना हमने, जीव अनंत वो भी अक्षय अनंत है, कोई न घुटने वाला है, वो जीव राशि को अनंत बार वर्ग 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 का वर्ग करते रहो तब जाके पुद्गल राशि आती है, यानी वो भी अनंत अनंत गुणा है। अब पुद्गल राशि को रखो और उसका वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग वर्ग का वर्ग अनंत अनंत बार करो तो जाके तीन काल के समयों की राशि आती है, जिसको हम तीन काल के समय कहते हैं, कभी कूटने वाले नहीं है। तो अनादि अनंत जो यानी तीन काल की जितनी पर्याय है उतने प्रत्येक द्रव्य की भी पर्याय होगी, तीन काल के समय है उतने ही पर्याय, क्योंकि एक समय में एक पर्याय, तो ना उसको कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड है, ख्याल में है? तो एक द्रव्य में पर्याय कितनी होती है ये बताया। देखो उसका उत्तर लिखाएंगे। देखो तीन काल यानी भूत वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत है, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। हमने एक समय में एक पर्याय लिए ना द्रव्य की, पूरे द्रव्य की मिलकर, द्रव्य की पर्यायों का जो यह अनादि अनंत प्रवाह है। प्रवाह क्यों कहा? देखो एक एक पर्याय है, दूसरे समय में दूसरी आई, पहली नहीं रही, तीसरे समय में तीसरी आई, चौथे समय में चौथी आई, इसको क्या कहेंगे? प्रवाह। पूरा द्रव्य तो कायम है, जैसे समुद्र है और उसमें लहरें आती है, तो एक लहर आई किनारे पर, कहाँ कहीं चली गई? हाँ वो दरिया बन गई, मिट गई है ना, क्या ये मिट गई और दूसरी आ गई, दूसरी आई वो मिट गई, तीसरी आई तो मिट गई है ना, क्या हुई? वो तो द्रव्य रूप से विद्यमान हुई। ऐसे ही द्रव्य अनादि अनंत कायम रहते हुए एक एक पर्याय का उत्पाद होते 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 ये द्रव्य अनादि अनंत है, तो उसके अनादि अनंत जो पर्याय है यहाँ लिखे ना, उसका जो प्रवाह है उसमें प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है। इस समय कौन सी पर्याय होगी ये निश्चित है कि नहीं है? पर्याय भी निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है। हाँ, क्योंकि ये पूरा अखंड द्रव्य में ही वो विद्यमान है। यानी अकेली पर्याय की तरफ देखकर हम क्रम नहीं कह सकते, ये पूरा ही अनादि अनंत जो द्रव्य है उसने अपनी एक एक पर्याय सुनिश्चित है, इसलिए हम उसको क्रमबद्ध कह रहे हैं। अकेली कोई सिंगल पर्याय देखे हमने, किसी का एक्सीडेंट हुआ, अरे अरे क्रमबद्ध था, अरे क्रमबद्ध है, परंतु तुमने निर्णय कैसे किया उसको देखकर? क्योंकि हमने सुन रखा है क्रमबद्ध, इसलिए हम कह रहे हैं वो सच्चा निर्णय नहीं है। हम अपने द्रव्य के सम्मुख होकर अपने अखंड द्रव्य को स्वीकार करेंगे, जानेंगे, समय दर्शन होगा, तब उस पर्याय का हमने सही निर्णय किया ऐसा कहेंगे। है तो क्रमबद्ध ही सभी पर्याय, पर जब रोटी बनती है तो क्रमबद्ध से भी मानती है कि हमने बनाई? मानते हैं
हमने
बनाई, वो तो क्रमबद्ध नहीं है,
हम ऐसा ही मानते हैं।
हाँ, परंतु जल गई करते करते ध्यान नहीं था क्या? वो क्रमबद्ध में थी, वो ऐसी हाँ, जब अच्छी होती तो मैं नहीं थी। ये जीव की कर्दा बुद्धि है ना। देखो, प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, अथवा इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। दोनों ओर से कथन कर सकते हैं। प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है और प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है, दोनों ओर से कथन हुआ ना। इस समय कौन सी पर्याय होगी वो भी निश्चित है, और इस पर्टिकुलर पर्याय इस समय होगी ये भी निश्चित है, दोनों ओर से निश्चित कर रहे। इसे किसी ने बनाया नहीं है। देखो, भगवान जान तो सकते हैं, परंतु भगवान ने जाना इसलिए द्रव्य पराधीन नहीं हुआ है, यही लोगों को लगता है। ऐसा क्रमबद्ध है तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? ये प्रत्येक यहाँ से अनादि अनंत ये सभी पर्याय निश्चित है। अभी हम किसी एक विशिष्ट पर्याय की बात करते, यहाँ के पर्याय, तो यहाँ पांच समवा है कि नहीं है? तो यहाँ ये जो पर्याय होगी वो पुरुषार्थ से होगी कि नहीं होगी? द्रव्य उस समय उसी पर्याय रूप से परिणमन करेगा, वो अपने पुरुषार्थ से परिणमन करेगा, और ये पूरे अनादि अनंत काल की पर्याय है, और ये सब कुछ भगवान ने पहले ही जान लिया है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान के पर्याय की योग्यता ऐसी है। मान लेते ये जीव द्रव्य है और उसकी यहाँ ये केवल ज्ञान रूप पर्याय हुई, तो इस केवल ज्ञानी ने सभी अनंत गुणों की सभी पर्यायों को एक साथ जान लिया। ये तो यहाँ पर है और ये सारी पर्याय यहाँ तक की सभी जान ली, तो ये क्यों जाने? ये ज्ञान की योग्यता इसलिए जाने। तो इसने जाने कि इस समय ये पर्याय होने वाली है, तो क्या ये द्रव्य पराधीन हुआ? क्योंकि इन्होंने जाना कि उस समय वो द्रव्य अपने पुरुषार्थ से उस रूप परिणमने वाला है, यहाँ पराधीनता कहाँ आई? हम ऐसा ही मानते, केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए हमारा सब कुछ वैसा ही होगा, तो हमारा क्या करना क्या रहा? ये वैसा ही होगा जो हमारे द्रव्य स्वभाव में है, भले केवल ज्ञानी जाने या नहीं जाने, हमारे एक एक पर्याय सुनिश्चित है, ये हम निर्णय करना चाहिए। अभी हम पर्यायों को नहीं जानेंगे सबको, क्या कहा? हम हमारे एक एक समय के पर्याय अनंत काल के जानने वाले नहीं है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं, अभी हम श्रुति ज्ञानी है, परंतु हम ऐसा निर्णय कर सकते हैं कि हमारे एक एक पर्याय सुनिश्चित है। इसके लिए तो सब पर्यायों को जानना आवश्यक नहीं है।
केवल ज्ञानी को हर समय, उनका भी ज्ञान हर समय बदलता है,
बिल्कुल नया नया ज्ञान के पर्याय है उनके भी,
लेकिन उन्हें पहले समय में ही ये पुष्पति की तीन काल की पर्याय देखा,
जान ली। हाँ,
दूसरे समय में वो ही जानेगा ना?
जानेगा, परंतु अभी मान लेते ना, इनका ये केवल ज्ञान इस समय हुआ और इन्होंने ये सारी पर्याय जान ली, परंतु इस समय वर्तमान की कौन सी और भविष्य की कौन सी, जाना कि नहीं जाना? और इस समय ये भूतकाल की थी और ये वर्तमान की थी और ये भविष्य काल की, ऐसी जाने?
तो उनकी वर्तमान की बदल जाती है, लेकिन तो पीछे में भी एक वजारा होगा ना?
हाँ हाँ, अभी यही केवल ज्ञान होते थे, यहाँ पर भी केवल ज्ञान है, अभी ये केवल ज्ञान ही है, इसको वर्तमान रूप से जान रहा है और ये सारी भूत पर्याय रूप से जान रहे हैं और ये भविष्य पर्याय रूप से जान रहे। प्रत्येक समय में जानता तो अनादि अनंत को है, तो इसमें वर्तमान कौन सा है वो जानेंगे कि नहीं जानेंगे?
बदलेगा, क्योंकि वर्तमान बदलेगा। हाँ, तो
यानी कौन से पर्याय वर्तमान रूप है और कौन सी भविष्य रूप है, ये तो उस ज्ञान में पलटा होगा कि नहीं होगा?
लेकिन तीन काल की
तो तीन काल की तो जान ही रहे
वही एक ही है
एक ही है एक से पूरा जान रहे कौन किसके सामने अभी खड़े है जैसे इसको उदाहरण दिया शास्त्र ने हम इस लाइन खड़े यहाँ पर और 24 तीर्थंकरों की ऐसी मूर्तियों के वो हम देख रहे हैं हम आदिनाथ भगवान के सामने खड़े और हमको सभी 24 दिख रही है तो हम कहाँ से अभी खड़े हैं आदिनाथ के सामने फिर जाके आगे जाके शीतलनाथ के सामने खड़े फिर भी हमें आदिनाथ से महावीर तक की सभी मूर्तियाँ दिख रही है परंतु हम अभी कहाँ खड़े है तो शीतलनाथ के सामने हम महावीर स्वामी के सामने पहुँच गए और वहाँ से हमको सभी 24 दिख रहे हैं तो अब हम कहाँ खड़े है महावीर के सामने दिख तो सभी रखे
हाँ भी बदल जाते
यानी इसमें भी वर्तमान कौन सा है उसका निर्णय चलेगा कि नहीं जैसे
आप ये नहीं बताया कि वर्तमान बदलेगा भूतकाल में ऐड होते जाएगा यानी ये पहले जो वर्तमान था वो भूत में गया
भूत में गया
आगे भविष्य में एक समझ लो कम हो गया अनंतों में एक कम
सब पूरा का पूरा पूरा सेट ही जान रहे पूरा सेट जान रहे
भूतकाल से भविष्य में वो पूरे से पूरा चीज जानते हर समय वही सेट तो वही रहने वाला बस ये मीटर
जैसे नेमिनाथ भगवान ने जाना अभी उनका केवल यानी इस समय चल रहा था किसी ने पूछा द्वारका ये इसका क्या होगा तो कहते 12 साल के बाद चलेंगे तब उनके वो जलने वाली द्वारका 12 साल के अंतर से जल रही है साक्षात जल रही है ऐसा उन्होंने जाना पर वो 12 साल के बाद जलने वाली वैसा जाना कि नहीं जाना अब वही नेमिनाथ भगवान आगे 12 साल बीत गए तब वो कैसे जान रहे उनको वर्तमान में जल रही है अब और आगे चलकर नेमिनाथ की बात छोड़ो महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ उन्होंने क्या जाना ये जली थी इस तरह से नेमिनाथ के काल में ख्याल में है ना बात तो उसका वर्तमान कौन सी पर्याय भूत में चली गई है और कौन सी अभी आने वाली है उसका ज्ञान है कि नहीं उनके ये वर्तमान बदलता रहेगा उनका पर जानेगा तो पूरी इस पर्याय उनको पूरे अनादि अनंत
हम सेट कहते हैं आदि भी चालू होती है और अंत भी होता है
यदि समझाने के लिए अभी क्या करें
समझाने के क्योंकि वो पूरे पूरी जहाँ तक उनके लिए तो सेट ही है ना वो तो भूतकाल भी जहाँ तक है वो सब देखते जो भी
वो आदि आदि अनादि रूप से देखते है वो भी
जो भी है उनके लिए समझ आ जाते
हैं सब आ जाते हैं तो कहते ये किसी ने बनाया नहीं है प्रत्येक पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही विद्यमान है अब ये अनादि अनंत द्रव्य है अब क्षणिक उपादान यानी क्या है इस समय यही पर्याय होगी ये क्षणिक उपादान इस समय ये तो त्रिकाली हुआ द्रव्य त्रिकाली उपादान तो पड़ा है अनादि से अनंत काल तक अब क्षणिक उपादान कौन सा है इस समय विशिष्ट पर्याय की योग्यता इस समय में पड़ी है वो द्रव्य में पड़ी है योग्यता उस समय वो द्रव्य उस पर्याय रूप से परिणमेगा ये योग्यता द्रव्य में है योग्यता रूप पर्याय में ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि पर्याय भी आई कहाँ से तो द्रव्य में से ही उत्पन्न होगी और वो योग्यता द्रव्य में ही पड़ी है क्योंकि हम देख रहे हैं ये लहर है वो सागर में से पानी में से ही निकलेगी तो किस समय उस रूप परिणमेगी ये योग्यता उस पानी में पड़ा है ऐसे हर एक में लगाना कार्य होने की योग्यता यानी तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं क्या कहा तत्समय की पर्याय की योग्यता को काल कहा काल लब्धि कारण कहा ना यानी वो उस समय की पर्याय की योग्यता वो योग्यता रूप धर्म उस द्रव्य में है वो द्रव्य का काल है ये विशिष्ट पर्याय का हम काल देख रहे हैं द्रव्य का काल अनादि अनंत है क्योंकि उसके हर एक समय में एक एक योग्यता पड़ी है किस रूप से परिणमना है उसकी यानी द्रव्य इतना सेल्फ सफिशिएंट है इतना ही नहीं केवल परिणमन करता है ऐसा नहीं विशिष्ट समय में विशिष्ट पर्याय रूप से ही परिणमेगा ऐसा उसने धर्म पढ़ा है यानी हर एक समय की योग्यता उसकी कोई जुदी जुदी जिस रूप है वो पड़ी है अंदर पूरा द्रव्य अखंड है वो अखंड एंटिटी है भले पर्याय इसी में है परंतु अभी पर्याय कौन से हो उसको मत देखो तो पूरा अनादि अनंत द्रव्य दिखेगा कि नहीं उसकी सारी पर्याय उसमें है क्योंकि द्रव्य किसको कहेंगे गुणों का और पर्यायों का समूह, वो है द्रव्य। पर्याय कुछ अलग एंटिटी तो है ही नहीं है। समझने के लिए हम उसको अलग अलग कौन सी पर्याय चल रही है उसको समझाने के लिए हम उसके भेद करते हैं। तो कार्य होने की योग्यता यानी तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं। द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है। देखो द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है और पर्याय का कौन सा हुआ, वो एक समय। तो पर्याय का स्वकाल एक समय का है, मात्र एक समय का ही नहीं, केवल इतना ही नहीं वह समय निश्चित है। क्या कहते हैं, पर्याय का काल कितना है, तो एक समय का। कोई भी एक समय चलेगा नहीं, वो अपना एक समय उसका निश्चित है, उसी समय वो कार्य होगा। एक समय तो है ही है और वो समय कब है वो भी निश्चित है। इस पर्याय का केवल ज्ञान होने का, पर्याय जो केवल ज्ञान हुई यहाँ पर उसका अपना समय है, परंतु वो समय भी निश्चित है ही नहीं है कि एक समय है कहीं पर भी फिट करो एक समय, ऐसा नहीं चलेगा। पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में, प्रवाह कहा क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो क्रम से जाते हैं, तो प्रवाह में प्रत्येक पर्याय निश्चित है, स्व समय में निबद्ध है, उसी समय से वो जुड़ी है, निबद्ध है ना, वो बंधी हुई है। इसको प्रवचन साल में कहा प्रत्येक पर्याय का जन्म क्षण है, अपना अपना जन्म क्षण है, उसी समय में वो उत्पन्न होती है। जैसे उन्होंने तो माला का उदाहरण लिया है, हम माला गिनते हैं ना, तो ये माला ऐसी है, उसका एक मणि हम ऐसा ऐसा आगे आगे जाते हैं, तो उसका प्रत्येक मोती या मणि है उसका अपना अपना उसका स्थान निश्चित है, उस स्थान को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। एक करने जाए तो माला ही टूट जाएगी, तो हो ही नहीं सकता, उसका अपना समय, उसमें अपना निश्चित क्रम है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने पर्याय का निश्चित क्रम है, वो अपने स्व समय पर उत्पन्न होगी ही होगी। हम कहेंगे अभी तो कैसे होगी, समय दर्शन का कार्य, अभी तो जीव वो निगोद में पड़ा है, चिंता मत करना, निगोद में पड़ा है जीव, और यदि उसके 10 साल के बाद समय तो होना है, तो वहाँ से वो निकलेगा, वो जो यथा जो मनुष्य में आएगा या जो तीव्यंश में आएगा, समय दर्शन की बात कर रहे, उस समय उसको समय दर्शन होगा ही होगा। तो फिर वो कैसा कर्म बांधेगा, उसको तो संगी पंचेंद्रिय होना पड़ेगा समय तो होने के लिए, और यदि उसकी पर्याय वहाँ होनी है तो वो निश्चित रूप से आएगा वहाँ, क्योंकि हम भी अर्लीस्ट 8 वर्ष में तो होता है, या तीर्यंश में, समूर्शन तीर्यंश में जन्म लेगा तो अंतर्मूर्त में समय दर्शन होता है। तो हो सकता है वो निगोद वाला जीव और 2-4 पर्याय करेगी, 2-3 हो सकता है, और समूर्शन जीव हो जाएगा और उस समय उसको निश्चित समय दर्शन होगा ही होगा। ये जो हमने देखा ना स्वयंभू रमण समुद्र में समूर्शन जीव है, असंख्या समय दृष्टि 5वें गुण स्थान वाले, तो गर्भजों में तो यथायोग्य काल के बाद सम्यक होता है, इसे मनुष्यों में 8 वर्ष के बाद होता है, समूर्शन तीर्यंशों में 1 अंतर्मूर्त के बाद हो सकता है समय दर्शन, क्योंकि वो कौन से होते हैं, सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। पहले कभी सम्यक तो होकर छूट गए हैं, उनकी सत्ता में दर्शन होने के 3 कर्म पड़े हैं, तभी उनको वहाँ अंतर्मूर्त में सम्यक तो हो सकता है, यानी उनमें वो 5 लब्धि नहीं लगती, डायरेक्ट उनको क्षोभ समय तो होता है, सत्ता में पड़ी है ना दर्शन होने की 3 प्रकृतियाँ, कभी समय तो होकर छूटा है और वहाँ उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं समय तो होकर छूटता है, असंख्यात वर्षों तक ये 3 प्रकृतियाँ पड़ी रहती हैं, तो उतने काल तक उनको क्षोभ समय तो हो सकता है, यदि वो संगीत पंचेन्द्रिय के भाव में है तो, एक केन्द्रीय में जाएंगे तो वहाँ तो समय तो नहीं होता, असंगी पंचेन्द्रिय तक उस पर्याय में समय दर्शन नहीं होता, परंतु संगी पंचेन्द्रिय बना, कोई नारकी है, कोई देव है, कोई मनुष्य है, कोई तीर्यंश है, और पहले पूर्व भाव में कभी समय तो होके छूटा है, तो ऐसे जीव को डायरेक्ट पहले गुणस्थान से 4th गुणस्थान वेदक सम्यक्त्व के साथ हो सकता है, उसमें ये पूरा 5 लब्धि का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होगा, शॉर्ट में हो जाएगा उसका, 2 लब्धि में, 2 करण में हो जाता है, 2 करण में, हाँ उसमें भी थोड़ी जो कुछ उसकी विशुद्धि होगी, उसका जो कुछ देशना का याद आ जाएगा, भाव आसन होगा, वो सब होगी उसमें, परंतु वो जो क्रम पूर्वक पांच लब्धि बताई इतनी सारी उनके जरूरी नहीं होती है।
लेकिन पहले एक दफे के दो दफे समय
छूटना
ही चाहिए और
तभी तो हम कहेंगे नहीं डायरेक्ट उसको हुआ है। अभी सम्मूर्छन जीव वहाँ पड़ा है उसको सम्यक तो होता है क्योंकि एक बार वो सम्यक तो हो चुका है। उसको सत्ता में कर्म वैसे पड़े हैं और उसको ऐसा है कि जिसने एक बार प्राप्त किया है उसके दोबारा थोड़े कारणों से हो सकता है हो कि जिसको दृष्ट पथ कहते हैं जिसने अपना रास्ता देख लिया है। जैसे हम कहीं नए गांव में जाते हैं और कोई एड्रेस हमको ढूंढना है आपके यहाँ तो सारे स्ट्रीट नंबर लिखे रहते हैं और आपका वो जीप वो लगा और आप चले जाओ वो हिंदुस्तान में आपको जाना है। हाँ। तो कोई एड्रेस आपको ढूंढते ढूंढते जाना है तो बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा। ऐसा भी नहीं एक बार आपने किसी एड्रेस को ढूंढ पाए आपको कोई नोन है चीज और वहाँ आपको जाना है भले आप 5 साल के बाद गए हम तो एक बार आपने वो देख लिया था तो वो ढूंढने में आसानी है। वैसे ही किसी का समय तो होके छूट गया है तो धौला शास्त्र में उसको कहा ये अभी दृष्ट पथ यानी देख लिया है मार्ग जिसने एक बार मार्ग देख लिया है उसको प्राप्त किया था अभी छूटा है हो सकता है वो जल्दी फिर दोबारा समय तो प्राप्त करे उसके लिए वो आसान है ना उस अपेक्षा से होता है। देखो पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में प्रत्येक पर्याय निश्चित है स्व समय में निबद्ध है। देखो ये हम पढ़ते भी है तो भी कितनी निश्चिंतता आती है ना हमें हम तो ऑल द टाइम आकुलित 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 रहते हैं ये कैसे होगा मेरा ये कार्य कैसे होगा मेरा ये कार्य कैसे होगा मेरे बच्चों का कैसा होगा मेरे धंधे का कैसा होगा मेरे क्या होगा तो हर बार हम उसकी चिंता 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 ऐसा अर्थ ऐसा नहीं कि समय दृष्टि को ऐसे विचार नहीं आएंगे। विचार आना अलग बात है और उससे व्यग्र रहना ये बात अलग है। वो भी जानता है कि यथा योग्य यथा समय सभी पर्याय होने वाली ही है उसको करने का भाव आना अलग है। फिर से करने का भाव आना अलग बात है और मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ ये मान्यता अलग है। नहीं समझे नहीं समझे ये पंखा घूम रहा है और आपने स्विच ऑफ कर दिया बंद हुआ कि घूम रहा है
फिर भी थोड़ा सा
ये घूम रहा है कि बंद हो रहा है बंद होने के लिए घूम रहा है। कुम्हार वो डंडी से चाक घुमाता है वो तो आपने देखा होगा ये लकड़ी लेके ऐसा ऐसा करके उसको घुमाता है वो फिर लकड़ी नीचे रख देता है अभी तो हाथ नहीं लगाई उसने फिर भी लकड़ी चल रही ऐसा रही चक्कर चल रहा है कुछ काल के लिए चलेगा उस पर वो बाकी कार्य भी कर लेता है मड़का बनाने का परंतु अभी उसका जो हाथ था घुमाने वाला फोर्स वो निकल गया है। ऐसे ही समय दर्शन होने पर भी उसके ये बच्चों का या घर गृहस्थी का व्यापार धंधे का भाव वाले आएगा करने का भाव है उसको परंतु मैं कर सकता हूँ मेरे कारण हो रहा है ऐसी मान्यता नहीं रही। मान्यता वाला वो डंडा उसने हाथ निकाल लिया है फिर भी वो जैसे घूम रहा है कुछ काल तक वैसे उसके कुछ काल तक उसके वो परिणाम होंगे क्योंकि अभी उसकी भूमिका कैसी है चौथे वाले की है पांचवे वाले की है तो अभी उसके ये करने के भाव आना अलग बात है और मैं कर सकता हूँ ये मान्यता अलग है उसकी वो मान्यता नहीं रही। इसमें डिफरेंस है नहीं ना क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी करते हुए दिखाई दे रहा है समय दृष्टि भी करते हुए दिखाई दे रहा है तो ये समय दृष्टि हम कैसे पहचाने उसको तो कहते आप नहीं पहचान सकते उसकी अपनी मान्यता क्या है उसके पीछे अभी उसको कर्तृत्व बुद्धि नहीं रही। कर्तृत्व बुद्धि मिथ्या दृष्टि को वो करने हो मैं कर सकता हूँ मान्यता से कर रहा है इसकी कर्तृत्व बुद्धि छूट गई है और होते हुए को वो जान रहे कि मेरे में ऐसा भाव आया है। वो अपने बच्चों को रोटी बना के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा व्यापार धंधा करेगा अभी घर गृहस्थी में देश पर संकट आया तो लड़ाई के लिए खड़ा रहेगा। ये भाव आना अलग बात है और क्योंकि हम देखो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुमको दिख रहा है परंतु उसको अपने में क्या हो रहा है उसको तो जानता है कि ये मेरे में भाव ऐसे आ रहे हैं कभी कभी नहीं करने के भी भाव है, फिर भी उसके कार्य में ऐसा खड़ा रहना पड़ता है, ऐसा भी होता है, होगा कि नहीं? कि पूर्व के जमाने में ऐसे थे कि बड़े बड़े जो ऊपर के राजा, उनके ऑर्डर आती है तो करना पड़ता है, उसके लड़ाई करने के भाव नहीं भी, आपके यहाँ भी होता है कि नहीं होता? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दी तो उसको वियतनाम में जाना पड़ा, उसका अपने तो इच्छा नहीं थी जाने की, ऐसे होता है ना? तो यहाँ तो अलग बात है कि समय दृष्टि को कुछ करने के भाव आना अलग बात है, तो उसकी कर्ता बुद्धि छुटी, जो उसकी स्थिरता बढ़ेगी, मुनि योग्य हो जाएगी, वितरकता मुनि हो जाएगा, तो अभी उनके करने के भाव आएगे कि नहीं? ग्रह ग्रह से बने के भाव आएंगे क्या उनके? हाँ नहीं आएंगे, क्योंकि अभी उनकी भूमिका ऊपर की, उनके यथायोग्य भाव कौन से होंगे? तो भगवान की वंदना के, दर्शन के भाव आएंगे, शास्त्र बताने के भाव आएंगे, लिखने के भाव, उनके भूमिका के। फिर भी वहाँ कर्ता बुद्धि नहीं है, मैं लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ऐसे मान्यता ही नहीं वहाँ पर। मुनि राजाओं ने इतने ग्रंथों की रचना की, अमृतचंद्राचार्य ने लिखा भी है ग्रंथ के अंत में कि हे व्यवहारी जनों, ये अमृतचंद्राचार्य ने ये ग्रंथ की रचना की, ऐसे मुंह से मत नाचो, ये तो मेरा कार्य नहीं है, मैं तो इसका जानने वाला हूँ। क्यों? क्या उनके तो भाव आया कि लिखने का, और ये अक्षरों की रचना सहज हो गई, और ये केवल जैसे बात बताते हैं ना, ऐसे दो लोगों को बताने के लिए नहीं, ऐसा वो स्वयं का अनुभव चल रहा है कि ये कार्य होते हुए को वो जान रहे हैं, कि सहज रूप से समझाने का भाव आया, यहाँ सहज रूप से वाणी ऐसी खिरी, जो बोलता है उसको वाणी की बात आती है, जो लिखता है तो उसको वो लिखने की बात, कि ये सहज रूप से लिखने का कार्य हो रहा है, तो होते हुए को जानते है वो। और अज्ञानी क्या मानता है? मैं करता हूँ, मेरे से ये इतना, मैंने देखो इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, डिफरेंस है ना दोनों में। अज्ञानी कुछ लिख रहा है और ज्ञानी कुछ लिख रहा है, तो ज्ञानी को तो भाव ये समझ में आता है कि मुझ में लिखने का भाव है और यहाँ इसी शब्द की रचना हो रही है। अज्ञानी क्या समझता है? देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो मेरे अक्षर कैसे है, दोनों ही लिखने की क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो बाहर से ज्ञानी को पहचानना चाहते, कैसे पहचानेंगे? जब तक इन बातों का ज्ञान नहीं है तो कैसे समझाएंगे? ख्याल में आई बात? चौथे गुणस्थान वाले की तो ये मर्यादा है, उसके तो बाह्य में कोई वहाँ व्रतादि तो है ही नहीं है, बाह्य में कोई उसका वेश पलटा नहीं है अभी, और कोई अज्ञानी कैसे है? ये मान्यता तो सारी वो करने बुद्धि की है, और बाह्य में सब कुछ छोड़कर संयमी जैसे रह रहे हैं, जैसे कहा मैंने, बाह्य व्रत सारे मुनि योग्य कर रहे हैं और अंतरंग में मान्यता ऐसी है, तो उनको ज्ञानी कहना कि नहीं कहना, कि अज्ञानी कहना कि असंयमी कहना? नहीं कहेंगे उनको, असंयमी कहेंगे। बाहर में संयम जैसा कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनका गुणस्थान कौन सा पूछेंगे? तो पहला, तो पहले गुणस्थान वाले को संयमी कहेंगे कि असंयमी कहेंगे? चौथे तक तो असंयमी है, वो बाहर क्रिया क्या कर रहे शरीर के उसके अनुसार संयमी असंयमी नहीं होते हैं, परंतु समाज में तो हम ऐसा ही देखते हैं। समाज किसको देखता है? बाहर के क्या कर रहे हैं, कैसा वस्त्र पहना है, क्या वस्त्र छोड़ा है, कि क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कितना, तो ये बहुत महान है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तत्व ज्ञान का अभ्यास स्वयं करना चाहिए, ऐसा नहीं पूछना कि ये सच्चा है कि खोटा है हमको बताओ, हम बताने से क्या, आप निर्णय करो, हमको ऐसी बात करनी कि नहीं करनी, ये तत्व ज्ञान है, क्या करना है आप निश्चित करो, समझे? क्योंकि आज कोई करो कहेगा और दूसरे दिन कोई आके बताएगा मत करो, ये जो निर्णय है वो अपना स्वयं का होना चाहिए, किसी ने बताया इसे नहीं, वो बताया तो उसके पीछे का रीजनिंग मालूम चाहिए, कोई दो उपदेश सुनते तो इसमें से सच्चा उपदेश कौन सा, इसका निर्णय हमें करना आना चाहिए, इतनी तो संगी पंचेंद्रिय को अक्ल है, बाकी व्यवहार में अपने लिए कौन सा फेवरेबल है या हितकारी है, कौन सा अहितकारी, इतना तो निर्णय है, सुबह से रात तक हेल्थ के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उसका तो बड़ा निर्णय है, और दूसरों को उपदेश भी देता है, क्यों अच्छी लगे, ये खाओ ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये करो ये करो ये करो ये करो, तो ये मैं आत्मा हूँ तो मेरे लिए क्या अच्छा है, इसका उपदेश का निर्णय हमें ही लेना चाहिए, है ना। हाँ, हो गया अपना समय, अब यही रुकेंगे हम। बोलो चौबीसों भगवान की।